मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 19 सितंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर में तथा अगले साल मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने दाखिले कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से तीन दोस्तों ने अक्टूबर नवंबर के लिए एडमिशन लिया है और एक दोस्त मार्च में आएंगे। तो सबसे पहले मैं अक्टूबर नवंबर के मित्रों का स्वागत करता हूं अपने पूरे एफईआईएस की टीम के साथ और उनके नाम हैं सूर्य प्रकाश, आप भद्री गांव से हैं, जिला आपका नालंदा है बिहार से। श्रवण कुमार तिवारी, आपका गांव है गंधौर, जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। और अफसर अहमद, आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। और अब मैं स्वागत करता हूं रवि राजवंशी जी का जिन्होंने मार्च की क्लास में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और रवि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो रवि आपका भी मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में हम लोग भारत का अर्थ इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। चलिए क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले कुछ न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनी होगी, हालांकि वो छोटी सी खबर है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि अगर ये छोटी सी है तो ये महत्वपूर्ण कैसे हो गई। देखिए महत्वपूर्ण तो आपको बनाना है ना कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। एक छोटा सा नट है गाड़ी के चक्के के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है उस गाड़ी के पूरे उपकरणों के सामने। तो आप हैं जो आप उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। न्यूज थी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ध्यान दीजिए याद कीजिए कि उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है, यानी कि फसल बीमा योजना का जो भुगतान होना है अगर वह भुगतान सही समय पर नहीं हुआ तो उसके लिए बकायदे जुर्माना देना होगा, दंड की व्यवस्था की जा रही है। और जो कंपनी है जिसके तहत जिस कंपनी से बीमा कराया गया है उसे 2 महीने के अंदर उनका जो क्लेम है उसका भुगतान करना होगा और अगर वो नहीं करेगी तो फिर उसे ब्याज देना पड़ेगा 12% के हिसाब से। और राज्यों के लिए 1 महीने की और छूट दे दी गई है कि 3 महीने, यानी कि राज्य इंश्योर करें, देखिए क्योंकि ये फसल बीमा योजना राज्यों के माध्यम से ही लागू होनी है, तो राज्य इंश्योर करें कि किसानों को उनकी फसल के बीमा का भुगतान मिल रहा है और 3 महीने के अंदर वो मिल जाए, ये राज्य देखें। और अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाएंगे तो राज्यों को इस बीमा योजना के बदले में जो किस्त जारी होनी है वह जारी होने वाली किस्त रोक दी जाएगी और यह योजना मित्रों अभी रवि फसल से शुरू हो जाएगी। एक खबर है। अब आप देखें कि इस खबर में महत्वपूर्ण क्या है, आप इसे कई एंगल से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी योजनाएं बनती हैं लेकिन लागू नहीं हो पाती हैं, और इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी आपको ये बात सुनने को मिल रही होगी कि किसानों को कब भुगतान ठीक से नहीं हो रहा, इस बीच में बहुत से आर्टिकल्स आए हैं। तो इस योजना इसके माध्यम से अब जो नया प्रोविजन किया जा रहा है दंड का विधान, तो बट नेचुरल है कि उससे अब उनको भुगतान मिलने में सुविधा होगी। दूसरी चीज आप देखेंगे कि किस तरह से अब अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, जवाबदेही, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप जवाब देना आपको पड़ेगा। इसको आप सोशल ऑडिटिंग भी कह सकते हैं और इससे आप परफॉर्मेंस बजट भी कह सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अब केवल टारगेट से बात नहीं बनेगी, और ये पूरे प्रशासन में लाया जा रहा है, प्रशासन में भी इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं। देखिए आप देखिए सेवा प्रदाता कानून, सर्विस डिलीवरी जो लॉ आ रही हैं कि ये सेवा आपको इतने दिन में मिलेगी, ये सेवा आपको इतने दिन में मिलेगी। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने कहा है कि डोर टू डोर सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे, फिर मणिपुर सरकार ने ऑलरेडी सिंगल विंडो सर्विसेज सेंटर बना दिए हैं, बनाने जा रही है, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं उनके कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। और आरटीआई जो कानून बना 2005 में, तो आरटीआई इसी तरह का है कि आपको 15 दिन में, एक महीने में सूचनाएं मिलेंगी, अगर नहीं सूचना मिलती है तो जो अफसर है वो जिम्मेदार होगा और उसे उसके इतने दंड का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि अगर दंड विधान कर दिया जाता है जो लागू करने वाले लोग हैं उनके ऊपर, तो डेफिनेटली उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी कि यार हमको तो ये करना ही करना है, नहीं तो हमें दंड देना पड़ेगा। और देखिए, दंड कोई नहीं देना चाहता, और अगर आर्थिक दंड है तो कोई नहीं देगा। मान लीजिए कि इसके लिए बीमा कंपनी के लिए, बीमा कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा, तो जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो उससे कहेगा कि भैया आपने क्यों नहीं किया, अगर ये दंड दे रहा है तो आप अपने पॉकेट से दीजिए, हम आपकी सैलरी से काटेंगे। तो वो ऑलरेडी अलर्ट हो जाएगा। तो यूं कह लीजिए कि ये पूरे के पूरे प्रशासन में, चाहे वो निजी प्रशासन हो, चाहे वो सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन हो, उनमें यह एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है जो पब्लिक ओरिएंटेड है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, ये आप इसे बल्कि नोट कर लें, ध्यान रखें और बाकायदे जरूरत पर इसका उपयोग करें। मैं दूसरी खबर पर आ रहा हूं मित्रों, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और ये खबर है पेशेंट के अधिकार से जुड़ी हुई, कि हमारे अभी जो मरीज हैं, जो बीमार लोग हैं, जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उनके अपने कोई निजी अधिकार नहीं है। देखिए, जो भी अधिकार हैं इसके बारे में, ज्यादातर वो सब के सब एक प्रकार से ऐसे लगता है या तो डॉक्टरों के पास है, या फिर अस्पताल के पास है, मैनेजमेंट के पास है। चलिए, सरकारी अस्पतालों में तो अभी उतना संकट नहीं पैदा हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें मरीजों के अधिकारों को लेकर के बहुत जबरदस्त बहस की स्थिति पैदा हो गई है, बहुत जबरदस्त स्थिति। अक्सर आप सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के बारे में दो तीन चीजें तो सुनते ही सुनते होंगे। पहली बात कि इलाज बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि आप उसके बिल का भुगतान नहीं कर सकते। दूसरा, आपको इस तरह के अमानवीय खबरें भी आपको सुनने को मिलती होंगी कि मरीज की डेथ हो गई है और जो हॉस्पिटल है उनका शव नहीं दे रहा है, कह रहे हैं कि पहले आप पूरा का पूरा भुगतान कीजिए अस्पताल का और इसके बाद हम आपको शव देंगे। तो इस तरह की खबरें बहुत आ रही हैं, और संकट क्या पैदा हो रहा है कि धीरे धीरे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज खराब होता जा रहा है, लोग प्राइवेट अस्पताल पर ज्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं। एक दूसरी बात भी है कि अब सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर रही है, कुछ दिनों के बाद देखें कि कैसे आयुष्मान भारत लागू ही होने वाला है, सभी राज्यों ने लगभग अपनी स्वीकृति भी दे दी है। तो सोच करके देखें कि अगर बीमा योजना लागू हो गई, ठीक है, मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया, क्योंकि अब अस्पताल में भर्ती होंगे लोग, क्योंकि अब उनको कम से कम एक संरक्षण मिल गया है, और पता लगा कि बीमा कंपनी उनका भुगतान नहीं कर रही है, वहां पेशेंट पड़ा हुआ है, तो हालत क्या हो जाएगी। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उसने एक मसौदा जारी किया है, एक और उस मसौदे में मरीजों के कुछ अधिकार के बारे में बात की गई है कि मरीजों के प्रति अस्पताल का और डॉक्टर का किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। तो ये बेसिकली चार्टर है, कह लीजिए सिटीजन चार्टर की तरह होगा, और उस पर अभी राय मांगी गई है, और बकायदे राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इसके बारे में स्टडी की है कि इस बीच में किस किस तरह के विवाद होते रहे हैं, किस किस तरह के संकट देखने को आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर के किस तरह के फैसले दिए हैं, उनको देख करके चार्टर तैयार किया है और उसे अभी मसविदा पेश कर दिया गया है। हो सकता है, कहा जा रहा है कि इसको फिर मंत्रालय आगे कानून के रूप में लेकर आए, और सच पूछिए तो ये समय की बहुत जबरदस्त मांग है कि मरीजों के भी अधिकारों की बात की जाए। दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, बस ये दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के लिए आज मैंने चुना है भारत का अर्थ। इसके बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसके 3 दिन का एक विचार विमर्श चल रहा है, राइट? भारत का भविष्य, आरएसएस का दृष्टिकोण, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसमें जो इसके सरसंचालक है, प्रमुख है, संघ प्रमुख है, मोहन भागवत जी ने ओपनिंग व्याख्यान दिया है। ओपनिंग व्याख्यान, मैं चाहूंगा कि आप इस व्याख्यान को सुने, डेफिनेटली ये अवेलेबल होगा। बहुत ही खूबसूरत व्याख्यान है और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि साल भर पहले मैं भारत भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, उसमें मुझे उनके साथ मंच पर उपस्थित होने का मौका मिला था। वहां भी मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से सुना, राइट। जब आप उनके उस व्याख्यान को सुनेंगे तो आपको सही मायने में ये जानने में मदद मिलेगी कि इनफैक्ट भारत है क्या। ठीक है, उन्होंने उसके माध्यम से जो आरएसएस का अपना दृष्टिकोण है वह बताने की कोशिश की है, क्योंकि आरएसएस के बारे में लोगों के दिमाग में सही गलत जो भी है भ्रम की स्थिति या धारणाएं बनी हुई हैं। बहुत लोग इसे फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, ये एक समन्वयकारी संगठन है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। तो दो अलग अलग पक्ष हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपनी बात कहने को स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को सही संदर्भ में जानने के बाद ही कोई धारणा बनाई जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आरएसएस के विरोध में है तो बट नेचुरली कि वो विरोधी बातें कहेगा तो हम वैसी धारणा बना लेते हैं। कोई उसके पक्ष में है तो वो अपनी बात कहेगा तो हम पक्ष में धारणा बना लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद हम दोनों को सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्याख्यान हमारे उस भ्रम को दूर करेगा। उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो भारत है वो बेसिकली सर्वलोक युक्त भारत है, हम ऐसा भारत चाह रहे हैं। जब वो कहते हैं सर्वलोक युक्त भारत, तो वो प्रधानमंत्री का ही वो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास। जब वो कहते हैं सर्वलोक युक्त भारत का मतलब ही है कि भारत शुरू से लेकर के और अभी तक हर धर्म को स्वीकार करता रहा है, हर जाति को स्वीकार करता रहा है, हर दुनिया के लोगों को स्वीकार करता रहा, सबको स्वीकार करता रहा है, और ऐसा भारत है और हम ऐसा ही भारत चाहते हैं। और सच पूछे तो यही भारत का अर्थ भी है। मित्रों, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान या हिंदू, अब ठीक है वो हिंदू एक खासकर धर्म से जुड़ गया है, एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग हिंदू कहलाने लगे हैं, लेकिन अगर आप इसके ओरिजिन को देखेंगे और इतनी इतिहास में आपने पढ़ करके जानकारी हासिल भी की होगी कि बेसिकली यह स्थानवाचक शब्द है। सिंध के क्षेत्र में आसपास में जो रहने वाले लोग थे, जहां पहले से शुरुआत में आर्य आकर के बसे, उस क्षेत्र के रहने वाले को हिंदू कहा जाता था, क्योंकि जो अरब देश के लोग आए थे वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, स को वो ह बोलते थे, तो सिंधु नदी की जगह वो हिंदू हिंदू बोलने लगे, तो हिंदू बेसिकली स्थानवाचक नाम है। दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म, भारत के धर्म को बहुत लोग सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है कि जो अभी का नहीं है, कोई हजार, 500, हजार, 1500, 2000 साल का धर्म नहीं है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और सच बात है कि भारतीय संस्कृति के आप मूल तत्वों को देखें, ऋग्वेद जो हमारा पहला एक तरह से लिखित ग्रंथ है, वहां से अगर आप उठा लें तो उसमें जो तत्व हैं आज तक की फिलॉसफी में आपको मिलेगा, और आप आज तक के जीवन में मिलेगा, आज तक की लोक चेतना में वो चीज मिलेगी। यार, इतने लंबे समय से अगर कोई चलता आ रहा हो तो सनातन तो है ही। अब सोचना यह पड़ेगा कि ये चलता क्यों आया है इतने समय तक। समय बदल गया, संस्कृतियां बदल गई, विचार बदल गए, राजसत्ताएं बदल गई, लोगों की जीवन पद्धति बदल गई, आविष्कार के कारण दुनिया का स्वरूप बदल गया, लेकिन यह चलता आ रहा है। कोई तो ताकत होगी, तो इसको चलाने वाली ताकत कौन सी है, क्या मशीनरी है इसकी? तो मित्रों, इसकी जो मशीनरी है, इसकी पाचन शक्ति, ये इसकी मशीनरी है कि जो भी आया उसको इसने अपने अंदर समाया और वो समा करके उसे नए स्वरूप में ढाल लिया, तो आज भी वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये इसके सनातन का सही अर्थ है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक, मतलब इसका हृदय इतना विशाल है, इसकी बाहें इतनी लंबी हैं कि ये सबको समेट लेता है और सबको अपने हृदय में स्थान दे देता है। मित्रों, ये है भारत का अर्थ और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और सच पूछे तो इसकी सबसे बड़ी महानता भी है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप उस व्याख्यान को सुने, उस बहुत अच्छी भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, हिंदी के बड़े प्यारे शब्द वो लेकर के आते हैं और बड़े सरल तरीके से वो अपनी बातों को रखते भी हैं। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब उसे देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: माधव सिंह गया बिहार से, शेख तौफीक औरंगाबाद महाराष्ट्र से, इक्तारदार अहमद, हर्षिता कुंजपुर उत्तर प्रदेश से, देवेश वर्मा, अरुण चौधरी और अतुल कुमार यादव इलाहाबाद से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।